हम जरा तकाबुल करें उन लोगों का जो असली तालीम याफ्ता है, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वकला और दीगर जो पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं। हम उनको देखें कि वो अपने बच्चों के मुस्तकबिल को संवारने के लिए माँ बाप अपने बच्चों को रोजाना आधा घंटा घंटा दो दो घंटे देते हैं अपने वाला, एक एक बच्चे के पीछे इतना लगा देते, एक एक बच्चे के पीछे। एक लड़के को डॉक्टर बनाना है, उसकी माँ सुबह से रात तक उसके पीछे दीवानी होगी, इस बच्चे को डॉक्टर बनाओ। उसका बाप जो है अपनी पूरी जिंदगी उसके पीछे लगा देता है कमाने के बच्चे को डॉक्टर बनाना, एक बच्चे को डॉक्टर बनाने के लिए, एक इंजीनियर बनाने के लिए। माँ बाप दोनों जो है अपने सारे सफर सारे प्रोग्राम मुकम्मल कर देते हैं, बल्कि बहुत से ऐसे होते हैं जो हिजरत करके दूसरी जगह चले जाते हैं रहने के लिए, बच्चे को डॉक्टर बनाने का है। हम जहाँ रहते हैं जिस जिले में वहाँ इस मैार के कोई स्कूल नहीं जिसमें हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे, हिजरत करके वो डिस्ट्रिक्ट बदल देते हैं, पास स्टेट बदल देते हैं। ऐसे भी माँ बाप देखे जिन्होंने मुल्क बदल दिया कि हम जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ हमारे बच्चे की मैारी तालीम का निज़ाम नहीं है, इसलिए हमने तय किया है कि 5 साल तक हमारा बच्चा फला जगह कॉलेज में पढ़ रहा है तो हम लोग इस मुल्क में रहेंगे, कारोबार हमारा होगा और बाप आता जाता रहता है, एक बच्चे को डॉक्टर बना रहे हैं। हमारे पीछे हमारे आगे इतना बड़ा हदफ है कि हमारी औलाद को दीन देना, उनको इस्लाम देना, वो इस्लाम पर दीन की मेहनत पर बाकी रहे, उसके लिए हम सोचें कि हम दीन के इस वक्त से अपनी दाद से लेकर पूरे आलम की फिक्र कर रहे हैं। अल्लाह मजीद तरक्की दे हमारी नीयतों में, फिक्र पैदा फरमा दे। हम खुद सोचें कि हमारे सामने हमारी औलादों के लिए हमारी नस्ल के लिए हमारे पास क्या प्रोग्राम है, हमारे पास क्या प्रोग्राम है। बुजुर्गों ने हमें एक आसान प्रोग्राम दिया है, मसरूफ से मसरूफ आदमी जो है वो आसानी के साथ उस प्रोग्राम के रास्ते से अपनी नस्ल को परवान चढ़ा सकता है और रोजाना आधा घंटा अपने बच्चों को लेकर घर बैठना है, रोजाना का आधा घंटा। रोजाना का आधा घंटा हमारे घरों में इस बुनियाद पर तालीम हो रही है, इस नियत के साथ रसम के साथ नहीं, कभी तालीम हो जाए तालीम हो रही है कुछ लिया इतना काफी नहीं। नस्ल की तामीर है, तालीम जो है वो एक तामीर है और ये आसमानी हुक्म है। अपने घरों में अल्लाह की आयत और हिकमत की बातों का मुजाकरा करती रहो, ये मेयार बनाना मतलब जो वाणी रहमतुल्लाह की नीयत ये थी कि मैं चाहता हूँ कि मुसलमान का हर घर मदरसा बने। मदरसे से क्या मतलब, मदरसा बनने का मतलब इतना नहीं है जो बच्चे नजरा कुरान पढ़ते हो जाए, नजरा कुरान पढ़ते हो जाए। मदरसा बनने का मतलब यह है कि बच्चों को घर में से ही पूरा दीन देना हो, जैसे हुजूर अलैहिस्सलाम के जमाने में सहाबा के घरों से उनके बच्चों को पूरा दीन देता था, ईमानियात का, इबादात का, मामलात का, अखलाकियात का, माशरत का, हलाल और हराम का, तक़वे और तहारत का, तज़किए का, हर लाइन का इल्म जो था वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से सहाबा के जरिए से घरों में मुंतकिल होता था और उन बच्चों को अपने घर से ये सारा इल्म मिल जाता था और तरबियत की उन बच्चों की घरों में हुआ करती। ये हमारे घर की तालीम जो है इसका बेहतरीन प्रोग्राम है। जब हम लोग अहमियत के साथ इसको अपने घरों में करेंगे फिर अपनी मस्जिद की जमात के सामने वक्तन फौरन इसका मुजाकरा करके मस्जिद की जमात को हम इसको ऊपर डालेंगे तो फिर ये मस्जिद वाली जमात जो है पूरी कुव्वत के साथ मोहल्ले में बात चलाएगी और मोहल्ले के घर घर में ये तालीम उस इस हकीकत के साथ शुरू होगी और फिर इसके नफे जो है सालों में महीनों में जाहिर होना शुरू हो जाएंगे। जिन बच्चों के सरों पर टोपियां नहीं थी टोपियां आ जाएंगी, जो बच्चे आवारगी बन जा रहे थे वो आवारगी छोड़कर मस्जिद वाले बन जाएंगे और अमूमी फिजा बनेगी। इसके लिए हमारा ये मकामी मेहनत का जो निज़ाम है ये बहुत मजबूत ढांचा है, बहुत मजबूत ढांचा है। लेकिन जब मजबूत से मजबूत और कीमती से कीमती शय हो लेकिन उसकी आजमत जब निकल जाती है तो फिर उसका नफा उस आदमी को नहीं होता जिसके दिल से उसकी आजमत निकली हुई। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अहले मक्का के दरमियान में जिंदगी गुजारी और बाद में मदीना मुनव्वरा में जहाँ ये अंसार थे उनके दरमियान हुजूर थे, वही मुनाफिक भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही थे। लेकिन ये अंसार के वक्त इन बजे रोजाना तरक्की हो रही ईमानी अखलाकी रामानी उत्तरम तरक्की और वो मुनाफिक रोजाना निफाक में पक्के होते गए। हुजूर जैसी शख्सियत के दरमियान वो अपने निफाक में पुख्ता होते गए और ये अपने ईमान में पुख्ता होते गए। मक्के में बिलाल रजी अल्लाह अन्हु जैसे आदमी के हबशी की नस्ल है, हुजूर अलैहिस्सलाम की जात की आपकी बातों की आज़मत और मोहब्बत से ले लिया तो आला दर्जे के मोमिन आला दर्जे के सहाबा में शुमार होने लगा। और अबू जहल आपके खानदान का आदमी आपके खानदान का और मक्का के शराफा में से उसका नाम अबुल हकम था, अबुल हकम था, लेकिन आज़मत और मोहब्बत की कमी रही और आपके एहतराम में कमी रही तो आपकी बात मानने से वो चीज़ माने हो गई और वो काफिरों का मुशरिकों का सरदार बनकर दुनिया से गए, अहले जहन्नम का सरदार बन गए। ऐसे ही अमल की आज़मत, अगर अमल की आज़मत है तो इस्लाम के जरिए से हम आला दर्जों पर प्रवास कर जाएंगे। मशहूर किस्सा हजरत मौलाना मंजूर अहमद नौमानी रहमतुल्लाह शुरू दौर में मैं रायपुर से मुतालिक थे, उन्होंने उनको मशवरा दिया था कि आप इस जमाने में अल्लाह के खास बंदों में से एक बंदा हजरत मौलाना साहब है, आप उनके पास जाया करें। उनके पास भी आपने रायपुर में मौलाना से ताल्लुक हुआ, फिर वो फैलाना शुरू किया। एक पता किसी जगह पड़ा मौलाना नौमानी रहमतुल्लाह सफर करने के इरादे से गए थे, मौलाना साहब ने कुछ बातें फरमाई तो उन्होंने नकल कर दी बात और फिर रायपुर में जा रहे थे तो मौलाना ने कहा कि मेरे दिल में डालिया था कि हजरत रायपुर रहमतुल्लाह को हजरत तहवी की बातें सुनाऊंगा, लेकिन हजरत रायपुर की शख्सियत बड़ी शख्सियत थी, ऐसा कहने की हिम्मत नहीं हुई कि हजरत मैं आपको सुना। बड़ी देर हो गई तो सलाम के बाद खुद हजरत रायपुरी ने पूछ लिया कि हजरत तहवी क्या फरमा रहे हैं। बोले मैंने काफी निकाल और वो बातें पढ़ना शुरू की, तो कुछ 15-16 बातें अभी पढ़ी, काफी चीजें लिखी थी मलफूजा तो उन्होंने ही मुरतब किए हैं मौलाना नौमानी रहमतुल्लाह अलैह। बोले अभी चंद बातें मैंने पढ़ी थी कि हजरत रायपुरी कहने लगे बस्तर कुतुब बन जाएगा, यानी इतनी बातें कर लेगा तो कुतुब बन जाएगा। ये जो बातें ढेर सारी हिदायत जो है काम की काम करने वालों के लिए, तो इतना कर लेगा। अभी जो 15-16 बातें पढ़ी थी और हजरत रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह का बस्तर कुतुब बन जाएगा, इतना कर लेगा तो कुतुब बन जाएगा। तो ये तो ऐसा मुस्कान, इसमें दावत तालीम और खिदमत इबादत तस्किया हर लाइन के मजामीन हैं और हर लाइन की मेहनत की अमली शक्ल है, सिर्फ मजामीन नहीं, सिर्फ मजामीन नहीं। रोजाना इधर तीन तस्वीर हमारी, तीसरा कलमा दुरूद शरीफ वो आला दर्जे का जिक्र है, तीसरा कलमा दुरूद शरीफ और इस्तिगफार बने वो आला दर्जे का जिक्र है। रोजाना के कलाम पाक की तिलावत अल्लाह का कलाम कलाम इलाज मसरूम दुआओं का इहतमाम रोजाना इंफिरादी थोड़ा वक्त तो फारिग करके आदमी अपनी हाजतें और उम्मत की हाजतों को अल्लाह से मांगे, ये ताल्लुक मानना के पैदा करने का बेहतरीन नुस्खा है। रोजाना चंद मिनट आदमी फारिग करके अल्लाह की बारगाह में तालिब और साहिल बनकर अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा, नौकरी का इहतमाम ये तरबियत का तरबियत के बेहतरीन असबाब है, लेकिन तरबियत उसकी होगी जो इन चीजों की पाबंदी करे। इसलिए गुजारिश है ये जो हमारा मेहमान है अजला जिलों की सतह से जो है पूरे पूरे जिलों की नुमाइंदगी कर रहा है, ये अल्लाह की तरफ से हमारे ऊपर एक नसीब एहसान है, इस पर अल्लाह का शुक्र करना चाहिए। और हमारी कोशिश ये हो कि ये चीजें जो है हमारे इलाकों में अपनी जात से जिंदा करें इसको और इसको अपनी मस्जिदवार जमातों में मुंतकिल करेंगे और फिर मस्जिद की जमात के रास्ते से हमारी मस्जिद के अतराफ में रहने वाले एक एक मुसलमान में इसको मुंतकिल करें। और पहले एक समय ऐसा रहमतुल्लाह अलैह ने 6 नंबर के साथ 7वीं चीज हमको बताई कि भाई लायानी से परहेज करें, हर किस्म की लायानी, बोलने की लायानी, सुनने की लायानी, मस्जिद बैठने की लायानी, इसमें कोई लायानी का कोई फायदा नहीं है। वो बोल जिसका कोई फायदा नहीं बोलने से, वो बोल जिसके सुनने से कोई फायदा नहीं, वो जगह बैठना जहाँ बैठने से हमारे दिन दुनिया का कोई फायदा ही नहीं, ऐसा ही हाल है। तो चाहे वो किसी के पास क्या नहीं बैठा हो, ऐसे मतलब आपके सब अपने तो आसिक भाइयों से दोस्ती नहीं है, लोगों के पास अपने बैठते हैं, लेकिन बाजार को जाके चाहे अच्छे तो आदमी खाली बैठे हैं तो इनके लिए बैठना गलत है, चाहे तो आदमी अच्छे बैठे हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने साहब को मना किया कि तुम बाजारों में बैठा, तो साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह हमको अपने जरूरत के वास्ते जाते हैं, जरूरत से साइड नहीं बैठ तिजारत के रास्ते जा रहे हैं तो वो सब घुस लेना। तो फिर हुजूर ने कहा कि तुम जब बाजार में जाओ तो फिर बाजार कहाँ करा कर उन लोगों से कह रहा जा रहा है जो जरूरत के लिए बाजार में जा रहे हैं उनको वजू फरमा रहे हैं कि बाजार में सलाम काम करो, रास्ता खुले को रास्ता बताओ, अमर बिल मारूफ और नहीं ने मुनकर करो और अपनी सवारियों पर मत बैठो, सवारियों की उम्र मत बना। यानी उनका हक है सवारी का, घोड़ा है ऊंट है, तुम वैसे ही बगैर सवारी के किसी जगह जाकर आधा घंटे उस सवारी पर खड़े हो गए वो सवारी को तकलीफ होगी, उस पर उधर जाओ। और एक नसीहत फरमाई हुजूर ने कि रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज को हटा दिया करो। ये उन लोगों से कहा जा रहा है जो जरूरत के लिए बाजार में जा रहे हैं, सदा माम करो, अमर बिल मारूफ नहीं ने मुनकर करो, रास्ता बोले को रास्ता बताओ, सवारी को मिंबर मत बनाओ। ये उन लोगों से कहा जा रहा है जो तिजारत कारोबार के लिए बाकी खाली किसी जाकर जगह जाकर बैठना इसकी कोई गुंजाइश नहीं, खाली कोई सफर करना तफरी का इसकी कोई गुंजाइश नहीं, फिर वैसे ही चार पांच दोस्त मिलकर चलो भाई चाय पीने के लिए 10 किलोमीटर इसकी कोई गुंजाइश नहीं। ये तरफ में इसराफ तो बहुत नीचे है, 10 किलोमीटर चाय पीने जाना या 15 किलोमीटर होटल पर खाने जाना ये तो तरफ में आएगा, इसराफ तो इससे बहुत नीचे है, ये तो ख्वाहिश है ख्वाहिश इसकी कोई गुंजाइश नहीं। तिजारत का सफर आदमी कर सकता है, तलब इल्म का सफर कर सकता है, तबलीग व जिहाद का सफर आदमी कर सकता है, सिलाजमी के लिए रिश्तेदारों को मिलने जा सकता है, दोस्तों को बुजुर्गों की खिदमत में हाजिरी के लिए सफर कर सकता है। बाकी फुकहा ने लिखा कि 3 मस्जिदों के अलावा किसी मस्जिद का भी कस्द नहीं कर सकता, हराम मस्जिद अक्सा और मस्जिद नबवी के अलावा किसी मस्जिद का भी के पास में मस्जिद किसी जगह बनी है नहीं, तो कस्द करके सफर करके वहां जाकर मस्जिद देखने जाते हैं तो अपने गाँव में भी मस्जिद है, मस्जिद ही है वो भी मस्जिद ही मस्जिद, तो कस्द करके मस्जिद तक नहीं जा सकता। तो फिर चाय पीने के लिए और घूमने के लिए अपने अपने साथ फैमिलियों के साथ और तबलीग के जिम्मेदार रहना हो जिले की सतह के और हल्कों की सतह के जिम्मेदार हों तो ये तो हम उस चीज को अपने कौम में राइज कर रहे हैं, हम उसको राइज कर रहे हैं, इससे जरूरत है ये एहतियात हमारे काम की। ये सातवीं जो चीज हमारे साथ ने समझाई कि लायानी से परहेज, ये सब किस्म की लायानी क्योंकि लायानी से आगे फिर उनमें मकरूह में शिकाफी होता है, फिर वो मकरूह तहरीर में जाता है, फिर हराम और फिर उसके ऊपर से जितनी शक्लें बना के डाल भी चला जाता है। इसलिए अपने नामों की एक तरफ पाबंदी करनी है और दूसरी तरफ इन तमाम किस्म की लायानी से अपने आप को अपनी नस्लों को बचाना है और नस्लों को बचाने का बेहतरीन रास्ता यही है कि घर की तालीम के जरिए से बच्चों की फिक्री और जहनी तरबियत करनी है। सिर्फ तालीम 5 मिनट पढ़ के उनको कुछ पता चला नहीं चला और तालीम पूरी करके ऐसा ना हो बल्कि हमारी नस्ल की फिक्री और जहनी तरबियत करनी, अगर फिक्र उनकी सही हो गई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा वाली की फिक्र हो गई तो हमारी औलाद दुनिया में कहीं भी चली जाएगी वो किसी गुमराह के हाथ नहीं लगेगी और किसी भी गुमराही का शिकार नहीं हो सके। इसलिए हमें एक तो अपनी दाद से और अपने मस्जिदों में अपने इलाकों में इसकी कोशिश करना है और दूसरा अमली तौर पर इसको अपने इलाकों में राइज करने के लिए जैसे हमारे यहाँ असला में और हल्कों में मस्जिदों में अमूमी मकामी काम की एक शक्ल है उसको मजबूत से मजबूत कर करने की कोशिश करनी है। आम मतलब जिम्मेदार हजरात चीफ स्पीकर को वालिब करते जैसे अभी अल्लाह का फजल है हमारे जिलों के जिम्मेदारों ने बैरून के कबालों को तबीयत पर लिया है तो इस 15 जवानों के भी कारगुजारी हुई, 17 जवान तक पेश हुई, 8 जवान है प्रोसीजर में है, 15 जवान का काम कर रहे हैं। ये 6 महीने जनवरी से लेकर जून तक में 15 जवान अभी काम कर रहे हैं, 8 जवान के प्रोसीजर में, 15 जवानों ने कारगुजारी सुनाई, 17 जवान तक पेश हुए। ये आप ने इसको तबीयत पर लिया है तो कोई लंबी मेहनत सूबे के कोई जिम्मेदार किसी जिले में इसके लिए नहीं आए से कोई जिम्मेदार किसी जिले में नहीं कह रहा कि जमात बनाने के लिए आए लेकिन जिले वालों ने इसको फिक्र में लिया, जिले चार महीने की जमातों को फिक्र में लिया। अल्लाह का फजल है हर साल जिले की जमातों में तादाद में इजाफा हो रहा। इसी तरह मकामी मेहनत को धुन बनाकर जो अगर काबू में आके मकामी मेहनत सही रूप से तो इंशाल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है कि मकामी माहौल में नुमाया तब्दीली शुरू हो जाए और जब मकामी काम पर हमारा उसके चिल्ले 4 महीने लगवाने में हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बल्कि वो अपनी जबान बनाएगा। अब उसको बैरून भेजने के लिए हमें शहर चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, बल्कि वो अपनी जबान बनाकर बैरून जाएगा। इसलिए जरूरत है अभी हम लोग थोड़ी देर बैठ कर इसको सोचे कि हमारे सूबे का मकामी काम, बड़ी बस्तियों का भी, छोटी बस्तियों का भी, और खैर मानूस बंजर इलाके का वहाँ का भी मकामी काम किस तरह तरक्की करे। हमारे पास नुस्खा है, मुजफ्फर है, अपनी दाद से लेकर बंजर बस्तियों तक पहुँचने का मशवरा, ढाई घंटा दूसरे गश के जरिए से पुरो जवाब की बस्तियाँ, सिरोदा के जरिए से दूर तक की अपने जिले की बस्तियाँ, हमारे पास एक मुजफ्फर नुस्खा है। बस उस नुस्खे को हम कैसे काबू में ला लें और अमली तौर पर अपने पूरे अमले को किस तरह हरकत में लाया जाए, इसके लिए आप हजरात से गुजारिश है कि आप हजरात इसके लिए राय दें कि हमारे पूरे सूबे में इस तरह पूरी पूरी कुव्वत के साथ मकामी मेहनत में हमारा वक्त लगा हुआ 100% अदा। अभी जो हरकत में अमला है वो 25-30-40% 60 से लेकर 75% तक का अमला जो है अभी किसी न किसी दर्जे में हरकत में है, तो ज्यादातर अमान तो नहीं है, 100% लोग हरकत में आवे, इसके लिए आप हजरात राय दें कि उसकी क्या शक्ल हो सके पेश करें। हरी साहब ने कल मुजाकरा हुआ था, देखना है पेश किया था हरून साहब ने कि सूबे में जो है ऐसी नामजद अफराद की जैसे गैरों के तकाजों पर गुज़श्ता साल जो जमात तैयार की थी ये भी से ऐसी कुछ जमातें बनाकर चलाई जाए, यहाँ से नामजद दो तीन साथी किया हो और वो हजरात पे अपने जिले में जाकर अपने साथ दूसरे ऐसे साथी तैयार करें जो मजबूत इस्माइलियत के हों और उनकी जमातें अली फजला में जहाँ तकाजा है वहाँ पर चलाया जाए, एक राय उन्होंने पेश की थी। इनके अलावा और भी कोई राय या यही राय मुनासिब है तो खुलकर हमारे सारे अजला के साथी कर रहे हैं मौजूद सब समझ में अच्छी तरह